जरा सोचिए, इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, मतलब जिसके पास उस समय का सबसे उन्नत विज्ञान था, एक बेजोड़ सेना थी और लगभग असीमित सत्ता थी।
हाँ बिल्कुल अजय।
हाँ अजय, और फिर भी एक ही झटके में वो पूरा का पूरा साम्राज्य कैसे राख बन गया। और दूसरी तरफ एक ऐसा समुदाय जो करीब 700 सालों से गुलामी में जी रहा था।
7 सदियां।
हाँ, जिन्हें लगता था कि बस अब सब खत्म हो गया है, उन्हें अचानक रातों रात आजादी मिल जाती है। मतलब आज की हमारी चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमने वाली है, तो चलिए इसे समझते हैं।
बिल्कुल।
आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो डॉक्टर जॉन ओसवाल्ड के एक बहुत ही गहरे व्याख्यान पर आधारित है। ये यशाया यानी आइज़या के अध्याय 47 और 48 के बारे में है। इसमें धार्मिक इतिहास है, दर्शन है और मानव स्वभाव का बहुत ही चौंकाने वाला विश्लेषण है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे प्राचीन इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्य जैसे कि बेबीलोन, उनका पतन किसी बाहरी दुश्मन से ज्यादा
उनके खुद के अहंकार से हुआ।
हाँ, उनके अपने ही बेतहाशा अहंकार के कारण हुआ, और कैसे पूरी तरह से निराश इसराइल को एक नई उम्मीद मिली। हम सत्ता का नशा, प्रतिशोध और अनुग्रह यानी ग्रेस, इन सब पर बात करने वाले हैं।
और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भले ही हम हजारों साल पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये अध्याय सिर्फ बीते हुए कल के धूल भरे पन्ने नहीं है,
मतलब आज भी प्रासंगिक है।
बहुत ज्यादा। अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो ये मानवीय व्यवहार, हमारी मानसिकता और बिना जवाबदेही वाली सत्ता का एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है।
अरे वाह।
मतलब ये ग्रंथ हमें बताता है कि इंसान का दिमाग तब कैसे काम करता है जब उसके पास असीमित शक्ति आ जाती है, और तब कैसे काम करता है जब वो सब कुछ खोकर पूरी तरह अंधकार में डूब जाता है। ये मानव स्वभाव का ही आईना है।
ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो इस कहानी का प्रवाह शुरू होता है बेबीलोन से, वो साम्राज्य जिसने इसराइल को बंदी बना रखा था।
सही बात है।
स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बेबीलोन का पूरा साम्राज्य मूर्तिपूर्या और एक झूठे विश्वास पर टिका था। वे आश्वस्त थे कि उनके देवता दुनिया में सबसे शक्तिशाली है।
हाँ, और उनका सिंहासन कभी नहीं डगमगाएगा, और यही वो बिंदु है जहां पतन की असली कहानी शुरू होती है।
अच्छा,
बेबीलोन का सबसे बड़ा अहंकार उनका ये सोचना था, मैं हूं और मेरे सिवा कोई नहीं है।
बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है।
है ना, अगर हम इस एक वाक्य पर ध्यान दें तो ये भयानक है। ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, ये सीधे तौर पर ईश्वर की जगह लेने की कोशिश थी,
खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानना।
बिल्कुल। जब एक सभ्यता इस मानसिकता को अपना लेती है तो वो अपनी सत्ता एक भ्रम की रेत पर खड़ी कर रही होती है। असलियत में उनके वे देवता पूरी तरह से शक्तिहीन थे जो सिर्फ प्राकृतिक चक्रों का प्रतिनिधित्व करते थे।
ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि सत्ता लोगों को सुरक्षित करती है, लेकिन यहाँ सत्ता ही उनके पतन का कारण बन रही है।
बिल्कुल, सत्ता का नशा।
ये तो ऐसा है जैसे जैसे कोई दलदल पर दुनिया की सबसे भव्य और ऊंची इमारत बना ले
हाँ, एकदम सही एनालॉजी है।
और सोचे कि वो कभी नहीं गिरेगी। बाहर से अजेय लग सकती है, लेकिन अंदर से उसकी कोई ठोस नींव नहीं है। क्या ये असीमित शक्ति बेबीलोन के लिए एक अंधापन बन गई थी?
100%। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ बेबीलोन की बात नहीं है, ये मानव इतिहास का एक सार्वभौमिक नियम है। डॉक्टर ओसवाल्ड इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि कैसे हारने वाले जीतते हैं और जीतने वाले हारते हैं।
अच्छा, कैसे?
जब अहंकार चरम पर होता है, पतन निश्चित है। स्रोत में एक दर्दनाक चित्र खींचा गया है कि बेबीलोन को रानी के शाही सिंहासन से उतरकर एक दासी बनना पड़ेगा।
मतलब एकदम जमीन पर।
हाँ, जो रानी कल तक रेशम पहनती थी उसे अब चक्की पीसनी पड़ेगी, अपने कपड़े घुटनों तक समेटकर नंगे पैर नदियां पार करनी पड़ेंगी,
वे बाप रे।
और ये अपमान पूरी दुनिया देखेगी। जो सत्ता खुद को भगवान की तरह ऊंचा उठाती है, उसका इस तरह से गिरना तय है। और सच कहें तो ये अहंकार हर इंसान के अवचेतन में कहीं ना कहीं छिपा होता है।
हाँ, हम सभ्य समाज में रहते हैं, इसलिए इसे खुलकर बोलते नहीं हैं।
बिल्कुल, लेकिन वो मैं ही सब कुछ हूं वाली मानसिकता हर युग में विनाश लाती है।
ये सच में गहरी बात है। सत्ता का नशा इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसे किसी को जवाब नहीं देना है। और श्रोत में प्रतिशोध और न्याय के बीच एक बहुत ही बारीक अंतर समझाया गया है।
हाँ, ये एक ऐसा बिंदु है जहां दुनिया का दर्शन उलझ जाता है। हम आम जिंदगी में न्याय और प्रतिशोध को एक ही पर्डे में तोलने लगते हैं,
जो कि गलत है ना?
एकदम गलत। डॉक्टर ओसवाल्ड स्पष्ट करते हैं कि न्याय ईश्वर के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्याय का अर्थ है एक संतुलित निष्पक्ष दंड जो व्यवस्था सुधारने के लिए है, लेकिन प्रतिशोध
वो तो स्वार्थी होता है,
पूरी तरह से एक अहंकार से भरा कृत्य। जब बेबिलोन सोचता है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं है तो वो न्याय नहीं करता, वो क्रूरता के साथ भड़ास निकालता है।
इसे समझने के लिए स्रोत में लिबनान के एक पत्रकार का किस्सा दिया गया है, वो बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
हाँ, वो जो प्रतिशोध के चक्र के बारे में है।
बिल्कुल, उस पत्रकार ने लिखा है कि प्रतिशोध काम कैसे करता है, तो मेरी उंगली तोड़ोगे तो न्याय के नाम पर मैं तुम्हारी सिर्फ उंगली नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हारी कलाई तोड़ूंगा।
और फिर कलाई के बदले बांह।
हाँ, बांह के बदले गर्दन, गर्दन के बदले सिर, सिर के बदले पत्नी की जान, बच्चों की जान और अंततः पूरे देश का विनाश।
यही है वो कभी न खत्म होने वाला भंवर। इंसान के हाथों में प्रतिशोध हमेशा विनाशकारी होता है,
वो कभी संतुष्ट नहीं होता,
वो रुकता ही नहीं है।
इसीलिए ईश्वर कहता है कि न्याय का काम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि इंसान जब बदला लेगा वो अपनी सत्ता को बढ़ा करने के लिए सीमाएं पार करेगा ही। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अक्सर हम ईश्वर के भय शब्द को बहुत नकारात्मक लेते हैं,
जैसे कोई तानाशाह आसमान में डंडा लेके बैठा हो।
हाँ, कि हम गलती करें और वो सजा दे, लेकिन डॉक्टर ओसवाल्ड इसे अलग नजरिए से पेश करते हैं। वो एक पिता और बेटी की एनालॉजी देते हैं।
वो एनालॉजी बहुत सटीक है।
एक पिता अपनी 3 साल की बेटी से बहुत ताकतवर होता है, वो चाहे तो डरा सकता है, शोषण कर सकता है, लेकिन एक अच्छा पिता ऐसा नहीं करता,
क्योंकि उसे जवाबदेही का एहसास है।
बिल्कुल, उसे पता है कि इस ताकत का हिसाब उसे एक उच्च सत्ता को देना होगा। यही असली ईश्वर का भय है, ये समझना कि हम ब्रह्मांड के केंद्र नहीं है।
और बेबिलोन के पास ये जवाबदेही नहीं थे, उन्हें लगता था वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसलिए वे अमानवीय हो गए।
तो एक सवाल है, अगर बेबिलोन की सोच थी कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, तो क्या ईश्वर और पड़ोसी से प्रेम करना इस अहंकार का बिल्कुल विपरीत है?
यह एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है, बिल्कुल विपरीत है। प्रेम का मूल अर्थ ही है खुद के स्वार्थ को पीछे रखकर दूसरे को स्वीकार करना,
जबकि बेबिलोन खुद को ही सब कुछ मानता था।
हाँ, और इतिहास गवाह है कि जब कोई समाज ईश्वर या नैतिक जवाबदेही को नकार देता है तो वह शक्ति बनाए रखने के लिए अजीब रास्ते खोजता है। बेबिलोन ने जादू, रहस्यवाद और अपने तथाकथित ज्ञान का सहारा लिया।
जादू मतलब शगुन विचारने की 70 किताबें?
जी हाँ, 70 किताबें।
श्रोत बताता है कि वे जानवरों के लिवर का आकार देखकर या तारों की चाल पढ़कर भविष्य नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। कोई उन्नत समाज अंधविश्वास में इतना कैसे डूब सकता है?
इसके पीछे मनोवैज्ञानिक वजह है। लोग जादू की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि ये बिना किसी नैतिक प्रतिबद्धता के नियंत्रण का भ्रम देता है।
अच्छा, मतलब खुद को नहीं बदलना पड़ता?
बिल्कुल, अगर कोई ईश्वर के सामने झुकता है तो उसे चरित्र बदलना पड़ेगा, अहंकार मारना पड़ेगा। जादू में बस मंत्र सीख लो, तारों की चाल समझ लो और शक्तियां आपके नियंत्रण में।
एक उलझन है, अगर उनके बौद्धिक ज्ञान ने उन्हें पतन की ओर धकेला, तो क्या ईश्वर पढ़ाई लिखाई या विज्ञान के खिलाफ है?
ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब समझना जरूरी है। ईश्वर विज्ञान या ज्ञान के खिलाफ नहीं है।
तो समस्या कहाँ है?
समस्या ज्ञान के उद्देश्य में है। जब हम ज्ञान को अहंकार पोषित करने का साधन बना लेते हैं तब वह विनाशकारी होता है। डॉक्टर ओसवाल्ड समझाते हैं कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री सीखना बेहतरीन है।
हाँ, बिल्कुल।
लेकिन ज्ञान के अहंकार में अंधे होकर विस्फोटक बनाना, वो खतरनाक है। बेबिलोन का विशाल ज्ञान उन्हें बचा नहीं सका, क्योंकि वो नियंत्रण की इच्छा पर आधारित था।
मतलब ज्ञान जब तक नैतिकता से नहीं जुड़ता वो सिर्फ हथियार है। अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। एक तरफ बेबिलोन ज्ञान के नशे में था, दूसरी तरफ इसराइल पूरी तरह से निराशा में डूब चुका था।
वे एक आध्यात्मिक कोमा में चले गए थे।
हाँ, उन्हें लगता था कि ना वो चुने हुए लोग रहे, ना भविष्य में कोई उम्मीद है। और स्रोत बताता है कि उन्हें जगाने के लिए ईश्वर को बहुत कड़ा प्रयास करना पड़ा।
वो प्रयास यशाया अध्याय 48 में साफ दिखता है। इस छोटे से अध्याय में सुनो, मेरी बात सुनो या ध्यान दो शब्द 10 बार आया है।
10 बार? बाप रे,
ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक हताश पुकार है।
ये तो ऐसा है जैसे कोई कंधों से पकड़कर झकझोर रहा हो कि भाई होश में आओ। स्रोत में इसके लिए कमाल की एनालॉजी दी गई है, ADHD वाले बच्चे की।
हाँ, ध्यान केंद्रित न कर पाने की स्थिति।
जैसे एक पिता को भटके हुए बच्चे को बार बार निर्देश देने पड़ते हैं, मेरी तरफ देखो, ब्रश उठाओ, अब कपड़े बदलो, ठीक वैसे ही इसराइल का ध्यान भटक गया था। वे सुन ही नहीं रहे थे।
और कारण ये नहीं था कि वे थके थे, असली कारण था कि उनका रिश्ता बहुत सतही हो गया था। वे यहूदी तो कहलाते थे लेकिन आस्था सच्चाई से दूर थी,
सिर्फ एक लेबल।
हाँ, डॉक्टर ओसवर्ल्ड आधुनिक उदाहरण देते हैं, जैसे आज कई लोग सिर्फ नाम के लिए ईसाई या मेथोडिस्ट होते हैं क्योंकि उनका जन्म वहाँ हुआ है।
धर्म एक सांस्कृतिक पहचान बनकर रह गया।
बिल्कुल, जब आस्था सिर्फ लेबल बन जाती है तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है।
तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर इसराइल इतना भटका हुआ था, सुनने को तैयार नहीं था, तो ईश्वर उनकी मदद क्यों कर रहा था?
यही तो सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ईश्वर मदद इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसराइल पवित्र हो गया था या पछतावा कर लिया था।
उनके पास ऐसा कुछ नहीं था।
ईश्वर का अनुग्रह यानी ग्रेस इंसान के अच्छे कर्मों का इनाम नहीं है। अनुग्रह ईश्वर के दयालु स्वभाव से उत्पन्न होता है। यह मुफ्त और बिना शर्त है।
इसका मतलब इसराइल खुद को बचाने के काबिल नहीं था और इसीलिए उन्हें बचाने के लिए ईश्वर को कुछ ऐसा करना पड़ा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।
कुछ बिल्कुल ही नया। और ये साबित करने के लिए कि ये ईश्वर का काम है, पीढ़ियों पहले से भविष्यवाणियां की गईं ताकि वे इसका श्रेय जादू या मूर्तियों को न दे सकें।
हाँ, क्योंकि मूर्तियां कुछ नया नहीं बना सकती।
वे सिर्फ प्राकृतिक चक्र का हिस्सा हैं। असली ईश्वर इतिहास में हस्तक्षेप करके कुछ ऐसा रच सकता है जिसकी कल्पना न की गई हो।
सोचिए उस समय के लोगों के लिए वो नई चीज कितनी बड़ी रही होगी। स्रोत में फारस के राजा साइरस का जो उदाहरण है, वो दिमाग घुमा देने वाला है।
बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है।
असीरियन साम्राज्य ने 1300 ईसा पूर्व में एक नीति शुरू की थी, लोगों को बंदी बनाकर दूर निर्वासित करने की, और ये 700 सालों तक चलती रही।
7 सदियां?
हाँ, एक ऐसी व्यवस्था जिसे पीढ़ियों ने नियति मान लिया था। और फिर साइरस आता है और इस 700 साल पुरानी प्रथा को एक झटके में खत्म कर देता है।
उसने न सिर्फ बंदियों को आजाद किया बल्कि उनके टूटे मंदिरों को बनाने का खर्च भी उठाया। ये सचमुच एक बिल्कुल नई बात थी,
एक अकल्पनीय मोड़। और यही दोहरी भविष्यवाणी दिखती है। इसराइल, जिसे लग रहा था वो बेसहारा विधवा हो गया है, उसके वंशज तारों जितने अनगिनत होंगे।
और दूसरी तरफ बेबीलोन, जो अजय रानी थी, उसे एक ही दिन में विधवापन और बच्चों के खोने का दुख झेलना पड़ेगा।
किस्मत पूरी तरह पलट गई।
और अंतिम संदेश साफ था, बेबीलोन में बस मत जाओ, उस झूठे अहंकारी समाज का हिस्सा मत बनो, हार मत मानो और घर जाने के लिए तैयार रहो।
चर्चा के अंतिम हिस्से में डॉक्टर ओसवाल्ड इसे आधुनिक समय से जोड़ते हैं। वे अमेरिका में लैटिनो समुदाय के जनसांख्यिकीय बदलावों का जिक्र करते हैं।
हाँ, जहाँ लोग पारंपरिक पहचान से दूर होकर नए आध्यात्मिक अनुभव खोज रहे हैं।
इसका उद्देश्य किसी धर्म को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि जब सतही पहचान संतुष्टि नहीं देती तो लोग नई सच्चाई खोजते हैं। ईश्वर आज भी नई चीजें कर रहा है।
हाँ, मतलब ये सच में सोचने वाली बात है। इंसान की आत्मा उस प्रामाणिकता की तलाश में रहती है जो जादू या सिर्फ सांस्कृतिक लेबलों में नहीं मिल सकती।
और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज रुक सकते हैं। अक्सर लोग अपनी जिंदगी में ऐसी दीवारें खड़ी कर लेते हैं जो अहंकार या पुरानी मान्यताओं की रेत पर टिकी होती हैं।
भ्रम की दीवारें।
हाँ, हम सोचते हैं कि जो चल रहा है वही चलेगा, लेकिन क्या वास्तव में उन नई चीजों को सुनने के लिए कोई तैयारी है जो आसपास आकार ले रही है? क्या सचमुच सुना जा रहा है या सिर्फ अपनी बनाई खोखली इमारत के अंदर सुरक्षा का भ्रम पाला जा रहा है जिसके गिरने का समय शायद बहुत नजदीक है?
ये एक बहुत ही गहरा सवाल है।
बिल्कुल, प्राचीन इतिहास से उठकर सीधे आज की सच्चाई से टकराता हुआ।